Hi Canada, assalamu alaikum, this is Bilal Ashraf.
And this is Mahira Khan. And our film Superstar is coming out this Eid al-Adha.
So go and get your tickets now.
Right now.
And see us on the big screen.
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे
SNS लॉयर्स को इन सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानने ले या सलाह लेने ले आज ही SNS लॉयर्स नु कॉल करो 416-655-2000
कैनेडियन स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन मार्केटिंग ला रहा है क्रिकेट के पुरजोश शायकीन के लिए पहला मेगा इवेंट ताजा फर्स्ट कैनेडियन इंटरनेशनल डे बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप
सितंबर 14 और 15 CAA सेंटर ब्रैम्पटन में आ रहा है ताजा फैंटास्टिक फॉल फेस्ट
रंगारंग तफरी से भरपूर शानदार प्रोग्राम
टिकट फ्री पार्किंग फ्री स्टॉल बुकिंग या स्पॉन्सरशिप के लिए राबता कीजिए
416-560-8583
चांदनी चौक चाट चटोरी गली में आमचू मुंबई पाव भाजी चटोरी गली में कलकत्ता भेलपूरी चटोरी गली में जलेबी तलेगी चटोरी गली में कपल कनर मटका चटोरी गली में
Enjoy Kijiye 12 food stations and up to 150 items at Chattori Gully Food Festival, Tandoori Flame Mississauga and Brampton. Niyat pislegi jab jeeb lap lapayegi, jab janta Tandoori Flame mein aayegi. Tandoori Flame, sab ke liye kuch na kuch.
Aaj jinna mitona hove, thodi bina nahi ho jachda. ਸੋਡੀ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾਲ ਕੋਣਾ ਕੋਣਾ ਸਜਦਾ
ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਧੀਆ 100 ਸਾਰ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚ 74 ਡੈਵਨ ਰੋਡ ਜਾਂ 142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਸਾਊਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਦੋਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ 9058747171
السلام علیکم میں شباہت علی فرام میگا منی ایکسچینج ہم تقریباً 18 سال سے منی ٹرانسفر کا کام کر رہے ہیں اگر آپ کو پاکستان پیسے بھیجنے ہیں یا منگوانے ہیں تو ہم سے رابطہ قائم کریں ہمارا فون نمبر ہے 905-279-4754 اور ہمارا ایڈریس ہے 4196 کوتھرا روڈ مسیساگا
ہیئر میکس الٹیمیٹ ہیئرنگ سولوشن HairMax offers the world's smallest digital hearing aid at guaranteed lowest price. 3 years all-in-one, worry-free service plan included with every hearing aid purchase. Do not wait. Call right now and book your free no-obligation hearing test. We have two convenient locations to serve you.
Jane Eglinton ya phir Dundas Arundale intersection par 416-792-8792 here max 416-792-8792
جی سلام کریں عبد الماجد جمالی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیر و خیریت سے خوش و خرم و صحت مند ہوں گے بھائی ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا 8:15 بجے تک جی ہاں 8:15 بجے تک آپ نے اور ہم نے ساتھ رہنا ہے آج اگست کی 20 تاریخ ٹیوزڈے کا دن اور 25 بیوٹیفل گورجس 25 ڈگریز ٹیمپریچر شہر کے کچھ علاقوں میں بارش ہو رہی ہے اللہ کی رحمت برس رہی ہے صاحب اور بس اسی طرح جیسے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم پاکستان سے براہ راست ٹیلی فون ہم جناب ویری ریناؤنڈ جرنلسٹ آف پاکستان قاور نعیم ہاشمی سے آپ کی ملاقات کریں گے اور پاکستان کی تازہ ترین خبریں اس پہ تبصرہ جناب قاور نعیم ہاشمی صاحب کا اور اس کے ساتھ آپ کے فون کالز ڈپینڈنگ آن دا ٹائم آپ کے فون کالز بھی ہم لینے کی پوری کوشش کریں گے میں ویلکم کرتا ہوں جناب قاور نعیم ہاشمی صاحب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر کیسے ہیں آپ
جی الحمد للہ ماجد بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں آپ سب کی میں خیریت چاہتا ہوں آپ لوگ کیسے ہیں
الحمد للہ سر آپ کی دعائیں
لگتا ہے پورا کینیڈا جو ہے وہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ اکٹھی ہو اور ہمارے پاس اتنی لائنیں اور ہزاروں لاکھوں کے حساب سے لوگ ایک دم کہیں کہ ہے وعلیکم السلام.
ٹھیک 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 ٹھیک. ان شاء اللہ سر, ان شاء اللہ سر, جس طریقے سے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ وہ دن بھی آئے گا کہ سب لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے اور آپ کو
لوگ گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے سب کی آواز سنیں,
سب کی آواز سنیں گے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان کے کیا حالات ہیں سر؟
پاکستان ٹھیک ہے جی. ابھی تک تو جو مسئلہ کشمیر ہے, جو مقبوضہ کشمیر کا ایک ایشو ہے, وہ ابھی تک ڈومینیٹ کر رہا ہے پاکستان جو ہے, یہ جو ایشو ہے, کیونکہ یہ بین الاقوامی ایک رخ اختیار کر چکا ہے. وہ جو آپ کا اور میرا موقف تھا کہ دنیا لا تعلق ہے, وہ اپنی جگہ موجود ہے, لیکن اب یہ کم از کم ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ جو ابھی سلامتی کونسل کا بند کمرے میں اجلاس ہوا, جس میں پانچ بڑے بیٹھے تھے, اس پہ ہم نے آج بات بھی کرنی ہے, تو اس پہ بعد میں بات کریں گے. سب سے پہلے ہمارے ایجنڈے میں تھا کہ آصف زرداری اور فریال تارکل کی خبر تھی ہمارے ایجنڈے میں, لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ لیٹسٹ نیوز یہ ہے کہ برطانوی وزیر اعظم جانسن جو ہے, انہوں نے فون کیا ہے آج ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کو. بورس جانسن نے فون کرنے کے بعد جو فون پہ گفتگو ہوئی ہے ان کی مودی کے ساتھ, وہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کشمیر جو ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, کشمیر کا معاملہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہے, اور ان دونوں کو یہ خود نپٹانا چاہیے اور تیسرے فریق کو ملوث نہیں کرنا چاہیے, یہ دو طرفہ مسئلہ ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایشو جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کا ایشو ہی ہے, اور اس طرح میرا خیال ہے کہ دنیا کو میسج دیا گیا ہے کہ ہمارا کیا تعلق.
جی
جب یہ آپ کہہ دیں کہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے,
جی
جب آپ نے ہندوستان کے وزیر اعظم کو بھی فون کر کے کہہ دیں کہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے, آپ جانے اور پاکستان جانے,
جی
تو ہمارا کیا تعلق. تو ٹرمپ کا بھی آج فرانس کے صدر کو فون کیا ہے انہوں نے, اور ٹرمپ نے مودی کو کال کرنے کے بعد عمران خان کو بھی کال کیا ہے. تو بہرحال ہمارے جو پاکستان کے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی, ان کا جواب بھی یہی ہے کہ واشنگٹن توقع سے زیادہ پاکستان کا حامی ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے جو پہلے بالکل خاموش نظر آ رہی تھی, اب وہ بتا رہی ہے کہ وہ دنیا کم از کم غیر جانبدار ہے. جو غصبانہ قبضہ کیا ہے ہندوستان نے یہاں پر مقبوضہ کشمیر میں, اور جو مظالم اس وقت ہو رہے ہیں, گھروں کو 16 دن ہو گئے ہیں آج کے لوگ گھروں میں محصور ہیں, بچے ہیں, بیماریاں ہیں, غربت ہے, کھانے پینے کا ایشو ہے, بچوں کے دودھ کا ایشو ہے, اور بے شمار چیزیں ہیں. تو ہم نے تو لوگوں کی میتوں تک کا بھی ذکر کیا تھا, تو یہ ساری چیزیں جو ہے اپنی جگہ پہ موجود ہیں, اور کرفیو جو ہے وہ اس میں کسی قسم کی گرمی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا کتی طور پر ابھی تک جب کہ ہم بات کر رہے ہیں. یہ سنتے ہیں اس پہ میرا خیال ہے ڈیٹیل میں بات کریں,
مگر میں آپ سے صرف یہاں پر ایک منٹ کے لیے میں روکوں گا آپ کو یہاں پر, کیونکہ بات چل نکلی ہے تھوڑی سی, تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان اور ہندوستان کی جنگ شروع ہو جاتی ہے, تو پھر یہ جتنے ممالک ہیں وہ پھر مداخلت نہیں کریں گے. ابھی تو ساروں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ پاکستان اور بھارت کا معاملہ, یہ تو پاکستان سب نے کہہ دیا کہ یہ بھارت اور پاکستان کا معاملہ ہے اور آپس میں مل کے یہ لوگ اس کو سالو کریں, وچ از ناٹ پاسبل. تو اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہو جاتی ہے, جس کے ہم سب خلاف ہیں, مگر اگر جنگ ہو جاتی ہے تو پھر یہ تمام ثالثی جتنے بھی ہیں وہ سارے آ جائیں گے کہ بھائی نہیں 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 جنگ آپ روک دیں, جنگ نہ کریں, آپ جنگ نہ کریں, آپ جنگ نہ کریں.
یہ ماضی میں بھی ایسے ہوتا رہا ہے, یہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو یہ جو فریق ہے جن ممالک کی آپ بات کرتے ہیں, یہ کسی نہ کسی کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. اپنے ماضی میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو جنگیں ہیں, اور امریکہ کا جو جنگی بیڑا ہے, وہ آتے آتے इतना टाइम गुजर गया था कि जंग खत्म हो गई थी और जंगी बेड़ा जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान की मर्जी को नहीं पहुंचा था। तो ये इनका असला बिकता है, इनका कारोबार होता है, ये चीजें तो है। अभी देखिए ना, अगर आपने बात शुरू की है तो कर ही लेते हैं कि ये जो सलामती काउंसिल का बंद कमरे में इजलास हुआ तो उसमें पांच वीटो पावर जो है, चीन, रूस, बरतानिया, फ्रांस, अमरीका, ठीक है ना, और चीन वाहिद मुल्क था जिसके मंदूब ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रूस, बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका, इन चारों की तरफ से कतई तौर पर कोई भी रद्दअमल सामने नहीं आया। लेकिन ये चारों जो वीटो पावर्स है इन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए रखी। तो ये जो सलामती काउंसिल का इजलास था माजिद भाई,
ये ड्रामा था सर।
ये टेक्निकल जो बात है नहीं, जो मैं आपको बताऊं, जब सलामती काउंसिल का किसी भी इशू पे इजलास होता है, सलामती काउंसिल का नहीं, सलामती काउंसिल के वीटो पावर रखने वाले पांच मुल्कों का जो बुनियादी रुकन है, ये जिनका हमने नाम लिया है, जो दूसरी जंग अजीम के बाद सरबराही कर रहे हैं दुनिया की, तो उसमें तय ये होता है उनके इजलास में कि ये इशू आया है, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, क्या इस इशू पे कोई करारदाद जो है सलामती काउंसिल में या उसमें सलामती काउंसिल के किसी इदारे में पेश करनी है या नहीं पेश करनी। लेकिन आपने देखा कि बिल्कुल खामोशी नजर आई, करारदाद का जिक्र ही नहीं हुआ। फिर एक बयान जारी हुआ अकवामे मुत्तहिदा की तरफ से, जब पूरी दुनिया ने ये कहा कि सलामती काउंसिल का इजलास हुआ तो लेकिन उसका नतीजा क्या निकला ये सामने बात नहीं आई। तो फिर अकवामे मुत्तहिदा का जो मुख्तसर हैंड आउट था उसमें कहा गया कि इस इजलास में अमन और सिक्योरिटी का मसला जो है वो सामने आया और मकबूजा कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला अकवामे मुत्तहिदा के चार्टर और सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए था। ठीक है
जी,
तो ये इसके अलावा कोई चीज सामने नहीं आई थी। तो फ्रांस जो था वो पहले ही इस इजलास के खिलाफ था, और बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान इजलास से पहले फ्रांस से सफारती रब्ता तक करने में नाकाम रहा था। तो अब पाकिस्तान ने फैसला किया है कि जी आज का जो ये अलामिया है कि ये चूंकि ये इंसानी हकूक का इशू है तो पाकिस्तान इस इशू को आलमी अदालत के इंसाफ में उठाएगा। तो
वहाँ क्या हो जाएगा,
बाहर आ गया आलमी,
वहाँ क्या हो जाएगा सर,
है जी, और ये पाकिस्तान में तो वही होगा ना जो आपको पता है, जिसका इजहार आप उससे ज्यादा खुदा कर लेते हैं, बिल्कुल आप कुछ कर रहे हैं। लेकिन और दूसरी तरफ भारत में बड़े तसलसल के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग कर रहा है और शहरी आबादियों पर हमले किए जा रहे हैं। आज भी कच्चा पानी सेक्टर में इंडिया ने गोलाबारी की है जिसमें एक 7 साल का बच्चे, उसमें 3 पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए हैं। अभी पाकिस्तानी फौज ने भी जवाब दिया है और पाकिस्तान के फौजी तर्जुमान का कहना है कि हमने भारतीय फौजियों को टारगेट किया है और उनके 2 मोर्चे तबाह किए हैं और एक अफसर समेत 6 भारतीय फौजियों को हमने अलग किया है। तो ये इस तरह ये जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इशू है वो इस तरह आगे की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी बड़ी खबर ये भी आपके में सबके आ चुकी है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, इनको 3 साल के लिए उनके अहदे पर तोसी दे दी गई है, उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है बढ़ा दी गई है। और ये 3 साल जो मुद्दत मुलाजमत है ये 31 नवंबर से शुरू होगी। तो ये बड़े अरसे से एक बहस जारी थी कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। बहुत सारे लोग जो है ज्यादातर ये थे कि चूंकि दोनों सिविल हुकूमत और फौजी क्यादत एक पेज पर है और फौजी सरबराह जो है वो बहुत हेल्प कर रहे हैं सिविल हुकूमत की हर इशू पे, वो कर्जे का इशू हो, वो सफारती मामलात हो, वो तमाम मामलात में इशाना बशाना वजीर आजम के नजर आ रहा था जो गैर मुल्की दौरों पर भी वो गए। तो ये बहरहाल इस वक्त जो पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने इस जो एक्सटेंशन है उसका खैर मकदम किया है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान और दूसरे जो तमाम लोग जो हैं वो इन्होंने किया है कि जी ये इलाकाई जो सूरत हाल है उसमें इनकी एक्सटेंशन जो थी वो बहुत जरूरी थी। और ये जो एक मुख्तसर सा अलामिया जारी किया गया है एक्सटेंशन का, ये फैसला जो है इलाकाई جو سلامتی ہے اس کے پیش نظر کیا گیا ہے. تو لوگ اسے وقت کی ضرورت قرار دے رہے ہیں. تو بہرحال ہم بتاتے چلے کہ یہ دوسرا واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جب کہ کسی فوجی جرنیل کو, فوج کے سربراہ کو ایکسٹینشن ملی ہے. تین جرنیل تو ایسے ہیں وہ جو خود اپنے آپ کو ایکسٹینشن دیتے رہے, جیسے یوب خان اپنے آپ کو ایکسٹینشن دیتے رہے, ضیاء الحق دیتے رہے, پرویز مشرف دیتے رہے. ایک جرنیل کو نواز شریف صاحب نے نکالا تھا, ہاں جی, باقی ریٹائرڈ ہوئے. تو اس طرح جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دی گئی تھی انہیں حالات میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اور یہ جو گیلانی صاحب ہے, یوسف رضا گیلانی, یہ وزیر اعظم تھے. اس وقت بھی خطے کے حالات جو ہیں بہت نازک تھے. بھارت کے ساتھ بہت کشیدگی تھی, روس پر کشیدگی تھی, افغانستان کے حالات جو ہیں وہ بھی کارساز نہیں تھے. اس وقت جب جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دی گئی تو تحریک انصاف کے سربراہ نے, جو اب وزیر اعظم ہے اور جنہوں نے جنرل صاحب کو ایکسٹینشن دی ہے, انہوں نے جنرل کیانی کی جو ملازمت کی توسیع تھی, ایکسٹینشن تھی, اس کی سخت مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ اس طرح کے فیصلوں سے قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں ان کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے, اور جتنی زیادہ وہ کر سکتے تھے تنقید انہوں نے کی تھی. لیکن آج وہ اسی جگہ پہ خود کھڑے ہیں, اور دوسری جو سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے ان کے اس جو ایکٹ ہے اس کو کہا ہے کہ جنگ کی کیفیت ہو اگر دو ملکوں کے درمیان, دو امزاؤں کے درمیان, تو چین آف کمانڈ جو ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے. یہ جو صورتحال ہے اس وقت. اور ایک بڑی دلچسپ خبر ہے اسی, اگر انڈیا کے حوالے سے بھی بات کریں تو اب ایک طرف تو دیکھیے پوری دنیا جو ہے وہ نریندر مودی کے خلاف ہے, غصے میں ان کے خلاف, مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے بہت ظالمانہ ایک کام.
نہیں اس کو ذرا نہیں ہولڈ اٹ. آپ اپنے الفاظوں پہ ذرا وہ کریں. پوری دنیا نہیں سر, پوری دنیا کے پاکستانی
ڈیفینیٹلی. میرا جو کہنے کا دنیا کا مطلب تھا وہ یہی تھا کہ پاکستانی یا
دنیا میں رہنے والے, دنیا میں رہنے والے پاکستانی جو ہے نا وہ ان کا رد عمل ہے. مگر
کشمیری بھی,
ہاں جی, کشمیری اینڈ پاکستانی, یس,
کشمیریوں کا بھی اور سردار لوگوں کا بھی ہے,
یس,
ہمارے خاص طور پہ سردار ہیں ان کا بھی بہت شکر گزار ہے مقبوضہ کشمیری کے لوگ, سرداروں کا بھی. وہ ابھی سردار جو ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر میں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جوان بیٹیاں جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں بند تھیں اور ان کے ماں باپ جو تھے وہ دہلی میں رہتے تھے. تو سرداروں کی ایک فیملی میں ان کے ماں باپ کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی این جی او کے ذریعے وہ مقبوضہ کشمیر لے کے گئے اور ان بچیوں سے ماں باپ کی ملاقات کرائی ہے. وہ بھی ایک کردار ادا کر رہے ہیں. میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک طرف تو آپ بھی یہاں پر دنیا کہاں کھڑی ہوئی ہے, گلوبل ولیج کس کو کہتے ہیں, گلوبل ولیج میں پالیسیاں کیا ہوتی ہیں, کہ ابھی متحدہ عرب امارات کو ہم لوگ اپنا قریبی دوست سمجھ رہے ہیں, اور انہوں نے دیکھی ابھی نریندر مودی کے لیے متحدہ عرب کے اعلیٰ ترین سول اوارڈ کا اعلان کیا ہے.
کیا بات ہے جی.
اور یہ اس وقت کیا ہے, یہ اس وقت کیا ہے جب یہ تمام حالات ہیں, اور اس پر پاکستان کی طرف سے میں نے کوئی رد عمل نہیں دیکھا. پاکستان میں اس خبر کو دبایا گیا ہے یا کیا کیا گیا ہے. یہ برطانوی جو پارلیمنٹ کی رکن ہے, ایک کشمیری ہے وہ ناز بٹ, ان کا ایک خط جو ہے اماراتی شہزادے کے نام پر وہ میں نے پڑھا ہے, اس سے یہ سر جھوٹے الفاظ میں جائیے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے نریندر مودی کو اس نازک موقع پہ جو اتنا اعلیٰ ترین سول اوارڈ دیا ہے, اس سے ہمیں کشمیری لوگ جو ہے وہ بہت مایوس ہوئے آپ کے فیصلے سے. آپ تو اس آدمی کو عزت دے رہے ہیں جس نے 16 دن سے کشمیر کو مکمل طور پر لاک ڈاؤن کر رکھا ہے.
تو وہ تو نریندر مودی تو دورے پہ جا رہے ہیں نا سر, وہاں پر
دیکھیں
نریندر مودی,
اسی لیے اعلان کیا گیا نا ان کا.
ہاں نریندر مودی تو دورے پہ جا رہے ہیں نا, یو اے ای کے دورے پہ جا رہے ہیں.
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی متحدہ عرب امارات ہے मुसलमान होने के नाते या किसी और नाते पे वो के फ्रीक बनेगा। कोई भी मुल्क जो पाकिस्तान के करीब तीन भी लोग नजर आते थे हमारे ख्याल में, वो भी जो है इस मौके पे वो दुराहे पे खड़े हुए हैं। तो बहरहाल जी, वो आप बात करते हैं जनाब आसिफ जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन, और उनकी बहन फरियाल तारपुर साहबा की, उन्होंने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में एक दरख्वास्त दायर की थी
जी,
उन्हें जेल में एक क्लास की सहूलत जो है वो मुहैया की जाए।
सही।
तो एहतसाब अदालत ने उनकी उनकी ये दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की है, लेकिन एक जो तहरीरी हुक्म जारी किया है उसने कहा गया है कि तहरीरी हुक्म में कि आसिफ जरदारी और फरियाल तारपुर अपने खर्चे पे हर सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं,
हर सहूलत से,
पैसे दें और सहूलत लें,
हर सहूलत से,
हर सहूलत हासिल कर सकते हैं। हर सहूलत जो है वो उसमें कुछ कैटेगरीज भी सामने आई है, मतलब वो अपने जेल के कमरों में एसी लगवा सकते हैं, कूलर लगवा सकते हैं, फ्रिज लगवा सकते हैं, अखबार मंगवा सकते हैं, टेलीविजन मंगवा सकते हैं, इंटरनेट की सहूलत मिल सकती है, मोबाइल मिल सकता है, है जी। तो इस तरह आईपॉड जो होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप टॉर्च रख सकते हैं, आप इस्त्री रख सकते हैं, जाती मुलाजम भी आप रख सकते हैं जेल के अंदर।
इसके साथ उसमें ये तो नहीं लिखा कि रियाज मलिक को कह के अपना एक घर भी बनवा ले अंदर?
मेरा ख्याल है जो मर्जी कर ले, एक और बुलावल उस बनवाए और उसके बाद ये आदमी दे रहे हैं कि जी हमारे पास ये जेल इस्तेमाल कर सकती है, ये हम दोबारा जब आए तो फिर हमें दे दिया जाए।
खावर नहीं माशफी साहब, ये आपको लतीफा और जोक नहीं लगता?
मेरे लिए तो ये जोक ही है, ये कि पैसे हैं तो फिर जेल जो है उसको फरास बना ले आप, जेल को तरस बना ले आप,
देख ले, मतलब ये तो मेरे लिए तो
है, तो दुनिया दुनिया का कोई भी जुर्म करे है
तो वो जेल तो ना हुई ना फिर।
देखिए हमें इस वक्त जो हम जो इस वक्त खबर पे तबसरा कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, उसमें हमारे कहने का ये मतलब नहीं है कि आसिफ जरदारी या फरियाल तारपुर जो है कोई हम उनको कोई मुजरम समझते हैं या हम पोलिटिकल प्रिजनर नहीं समझते। पोलिटिकल प्रिजनर होंगे और हम उनके जो चाहने वाले लोग हैं उनको भी किसी किस्म की दिल आजारी नहीं चाहते, लेकिन हम एक खबर के तौर पर बता रहे हैं कि ये सहूलतें फिर जो उनके लिए भी मिसाल बन गई है, नवाज शरीफ साहब के लिए भी, और अगर नवाज शरीफ साहब के लिए बने हैं तो फिर दुनिया का हर वो कैदी जो पाकिस्तान में मौजूद है और जिसके पास पैसे हैं वो तो ये सारी सहूलतें फिर एक मिसाल बन गई है ना। तो फिर लोग तो फिर शहर के लिए आया करेंगे पाकिस्तान में, यहाँ पर वो जो कोई ना कोई काम किया जेल में चले गए और जेल में बैठ के मजे लिए उन्होंने। तो बहरहाल ये खबर थी और खबर के तौर पर इसको लिया जाए और किसी तौर पर न लिया जाए। और एक बड़ी खबर जो हम जाते जाते बताएं उसके बाद मेरे ख्याल में हम कुछ कालों का सिलसिला भी शुरू करें, लोगों के सवाल जवाब देने में बहुत मजा आता है
जी।
कि ये जो एहतसाब अदालत के जज अरशद मलक की एक वीडियो रिलीज की थी मरियम नवाज ने, आपको याद होगा, जिसमें वो जज साहब कह रहे थे मैंने नवाज शरीफ को जो सजा है, जज का नाम अरशद मलक था, मैंने जो नवाज शरीफ को सजा है वो दबाव के तहत दी है, मैं सजा नहीं देना चाहता था, दबाव की वजह से दी है। तो और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर इनका केस जो है ये जज का अपने कंट्रोल में ले लिया था, सुनवाई हो रही थी, आज भी इसकी सुनवाई हुई है, और ये दो या तीन दिन में इस जज का वीडियो का फैसला आ जाएगा, उस वीडियो का जो मरियम नवाज ने पब्लिक की थी
जी।
तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आज समाप्त की है वहां पर तीन रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा भी मौजूद थे, उन्होंने रिमार्क्स दिए क्योंकि ये जो हमारी एफआईए है वो मरियम नवाज ने जो वीडियो रिलीज की थी उसकी अब तक अदालत में फॉरेंसिक रिपोर्ट ही जमा नहीं करा सकी, जिसपे अदालत बहुत बरहम भी हुई आज। तो फिर अदालत ने कहा कि अच्छा हम दो तीन दिन में फैसला दे देंगे। तो उनके जो रिमार्क्स हैं को अगर कह गए, अगर कोई आदमी रिमार्क्स हैं, ये रिमार्क्स को रिमार्क्स के तौर पे लिया जाए, जो रिमार्क्स होते हैं उनके मुताबिक फैसला नहीं आता। लेकिन आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा कि इस वक्त हमारे पास नवाज शरीफ की रिहाई और सजा के खात्मे के लिए कोई दरखास्त नहीं आई इस बुनियाद पर, लेकिन अगर कोई दरखास्त दी गई तो इस वीडियो की बुनियाद पर वो सूदमंद साबित हो सकती है, नवाज शरीफ रिहा भी हो सकते हैं और उनकी सजा का खात्मा भी हो सकता है।
क्या बात है जी।
तो ये बड़ी एक अहम बात है और ये फैसला जो है ये यानी कि 23 तक दो दिन के बाद ये फैसला आ जाएगा इस वीडियो का। और ये वीडियो भी दो वीडियो की, एक की नहीं दो की कहानी है। एक वीडियो तो वो है जो मरीम नवाज साहबा ने दिखाई लोगों को कि लो जी ये जज जिसने नवाज शरीफ को सजा दी है वो तो खुद कह रहा है कि मैंने दबाव के तहत दिया है, सजा बनती नहीं थी लेकिन मुझे देनी पड़ी। और एक वीडियो और भी है और वो वीडियो है जो कि जज अरशद मलक कहता है कि वो वीडियो नून लीग ने हासिल की, वो मुल्तान की कोई वीडियो थी जब वो मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुआ करते थे, तो वो कोई गैर इखलाकी मामलात कर रहे थे, कोई सेक्सुअल वीडियो थी, वो उनका कहना था कि वो नून लीग ने हासिल की और कहा कि ये तुम्हारी वीडियो जो है हम वायरल कर देंगे। तो उस बुनियाद पे उन्होंने उनको बुलवाते थे, वो उनके पास जाते थे और फिर वो इस तरह की बातें वो कहते थे करो और मैं करता था और वो मेरी बातें रिकॉर्ड कर लेते थे। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस जज की बहुत ज्यादा आज जुबानी तौर पर मुरम्मत की है और कहा है कि ऐसे जज जो है वो लिया के माथे पे कलंक का टीका है और हुकूमत जो है उसके पास है इस जज की खिदमात इस वक्त, और हुकूमत को भी हुक्म दिया गया है कि इसकी खिदमात जो है हुकूमत विड्रॉ करे और इसको जो है वो इसकी खिदमात जो है वो हाईकोर्ट के हवाले की जाए ताकि हाईकोर्ट इस जज का फ्यूचर का भी जो इसका प्रोफेशनल फ्यूचर है उसका फैसला भी कर दे। इसने तमाम जजों के सर जो है वो शर्म से झुका दिए हैं इस जज ने जिसका नाम अरशद मलक है। जी भाई अगर आप
जी अब मैं लाइनें खोलता हूँ अपनी, ज्यादा लाइंस तो नहीं ले सकेंगे मगर फिर भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे हम। 4166201778 हमारा फोन नंबर है, 4166201778 हमारे स्टूडियो का नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं और कावर नीम हाशमी से अपने सवाल कर सकते हैं। पहली कॉल जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
हाँ जी वालेकुम सलाम हाशमी साहब और माजिद भाई सलाम अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम
माजिद भाई, मेरी कॉल काटी है कि नहीं और आपने जवाब नहीं कोई भी देना, सिर्फ हाशमी साहब जवाब देंगे।
पहले आपने इतनी कंडीशन लगा दी मुझ पे तो
आप बोलते फिर वो हमारे सवाल रह जाते हैं।
अच्छी बात,
सवाल सबसे पहले ये
सवाल
जी, बाजवा साहब को तस्लीम मिली है तो जो पीछे आने वाले जिनकी सारी जिंदगी उनकी भी फौज में ही गुजरी है जो जूनियर थे उनका भी दिल करता है कि ये जनरल तो जा रहा है तो हमारा भी इंशाल्लाह कल को हमें भी स्टार लगेंगे। हर एक की ख्वाहिश होती है कि हमारी भी तरक्की हो जाएगी, एक दिन आएगा हम भी जनरल बन जाएंगे। तो एक तो उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ ये बताएं, दूसरा जनरल साहब की ये जो बैकग्राउंड है वो अगर बता दें तो कुछ, क्योंकि हवाएं ऐसी सुन रहे हैं हम भी कि उनका जो फैमिली है वो कहाँ दफन है, किस मसलक से तलक रखते हैं, अगर बता दें तो ठीक है, ना भी बताएं तो कोई बात नहीं, लेकिन हवाएं इधर बहुत ज्यादा कोई ऐसी कुछ सोचे छोड़ रहे हैं या कोई सही बात है कि ये किसी और क्या से तलक रखते हैं, ये अगर ये बता दे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। लेकिन हक खाना किसी का ये नजायज है, इनको कह देना चाहिए था कि भाई मुझे नहीं चाहिए, या जैसे पहले जनरल गए हैं तो अगर ये नहीं भी गए तो लोग कहते हैं जी इनका किरदार देखो जी इन्होंने ये किया वो किया, कश्मीर तो नहीं लेके दिया या कोई इतना को बड़ा मार्का तो नहीं मारा इन जनरल को जिस की वजह से इनको ये मिली है जो ये जो तस्वीर मिली है।
बहुत शुक्रिया सर आपका। जी
जी मैंने जनरल बाजवा साहब का जो प्रोफेशनल प्रोफाइल है फौजी कैरियर का, उसका मैंने बहुत मजबूत प्रोफाइल है। जो इनका बुनियादी सवाल है कि जब किसी भी फौज के सरबराह को उसकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने पर एक्सटेंशन दी जाती है तो क्या होता है, तो ये फौज के कवानीन है कि जो लोग लाइन में होते हैं, जो इस 5-7 जनरल ऐसे होते हैं जिनमें से चुनाव होना होता है नए फौजी सरबराह का, वो लोग जो है वो आज खुद रिटायरमेंट ले लेते हैं या घरों को चले जाते हैं और वो क्यों से बाहर निकल जाते हैं और वो प्रोफेशन से भी बाहर चले जाते हैं। तो ये बात दुरुस्त है कि वो एक लोग मुतासर होते हैं जो उस क्यू में होते हैं या जो उनके आने वाले हकदार होते हैं वो होते हैं, पर ये अब खुद जनाब वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, मैंने अभी जनरल परवेज अशरफ कैनी साहब की मैंने मिसाल दी थी कि जब उनको, क्योंकि ये दूसरे जनरल हैं बाजवा साहब जिनको इस तरह एक्सटेंशन मिली है और परवेज अशरफ कैनी पहले जनरल थे जिनको जरदारी साहब की हुकूमत के दौर में एक्सटेंशन दी गई थी, और इस एक्सटेंशन पे जो इमरान खान ने रद्द अमल जाहिर किया था वो जो है वो लोग उस पर आज कह रहे हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान ने आज एक और नया यू टर्न लिया है, क्योंकि अगर उनको अपनी वो तकरीर याद आ जाए तो ये जो सवाल करने वाले हैं उनके लिए उनकी वो तकरीर जो थी वही काफी थी। जी
और किस मनसब से इनका ताल्लुक है ये भी उन्होंने पूछा साहब।
जनाब वाली ये एक जो प्रोपेगेंडा है सोशल मीडिया का, इस में मैं कथित तौर पर नहीं पढ़ना चाहता और ना मैं इनके, ये भी मैं नहीं कहता कि मैं उनकी फैमिली को जानता हूँ या मैं उनका फैमिली बैकग्राउंड जानता हूँ, ये क्योंकि मैं नहीं जानता चीजें, और ये सिर्फ और सिर्फ कोई आदमी भी अब तक ये साबित नहीं कर सका अमली तौर पे कि उनका किसी खास फैमिली से ताल्लुक है, तो हम सोशल मीडिया की खबरों पे तबसरा ना करें, तो मेरा ख्याल गुरेज करना चाहिए, पाकिस्तानी फौज के वो सरबराह है और हमें उनका एहतराम करना चाहिए।
बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई,
आप बात कर रहे हैं सर? आसिम भाई फरमाइए,
कैसे हैं आप? खैरियत से?
अल्हम्दुलिल्लाह सर, फरमाइए।
माजिद भाई मेरा एक सवाल तो ये है कि ये पिछले साहब ने सवाल किया था जनरल साहब के बारे में कि ये एक प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीदी इख्तियार है, ठीक है, इसके बाद मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है कि उनको एक्सटेंशन क्यों दी गई है। कश्मीर के बारे में बात कर रहे थे हाशमी साहब के, मेरा ख्याल से हावर साहब को पता है, हमें पता है कि अगर हमें कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो ये क्यों हम इसको ज्यादा, हम सिर्फ चाहते हैं कि ये इशू लोगों की जुबान पे रहे और उनको आहिस्ता आहिस्ता इस चीज की अहमियत के बारे में पता चले। और एक छोटा सा सवाल मेरा हावर साहब से मीडिया के बारे में है कि हमें बताएं कि हम कौन सा मीडिया देखें, कौन सी न्यूज को फॉलो करें, एक जगह पे लगाएंगे तो इमरान खान की खबरें चल रही होती हैं, दूसरी जगह पे नवाज शरीफ की खबरें चल रही होती हैं, तीसरे चैनल पे अगर देखें तो पीपल्स पार्टी की खबरें चल रही होती है। ये काइंडली हमें बताएं कि हम कौन सा यहाँ पे बैठ के कौन से मीडिया को फॉलो करें और कौन सी खबरें बैठ के 5 मिनट के लिए देखें। थैंक यू वेरी मच।
बहुत शुक्रिया जी। जी कावादी माशवी साहब,
आप माध्य साहब बताएं कि ये जो जिस मीडिया पे हम इस वक्त
ई आवाज पे, ई आवाज को देखा करें,
मीडिया से ज्यादा ई आवाज पे देखें, और अगर ई आवाज जो है उसमें आपको कोई जानबदारी नजर आए तो उसका फिर हम जवाब देंगे। तो मीडिया की जो जानबदारी है पाकिस्तान में या वो दूसरे ममालिक में भी होती है, ये उसको रोकना कोई हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये माफिया होते हैं, वो जर्नलिस्ट हो या मीडिया मालकान हो, तो बहरहाल तो ये इन्होंने ठीक कहा कि मीडिया कंफ्यूज करता है चीजों को और कर रहा है, लेकिन मीडिया भी जो है वो भी देखिए, मैं दो टोक कहता हूँ आपको, کہ میڈیا پوری دنیا میں وہ کوئی مثالی میڈیا نہیں رہ سکتا جس کو ہم کوئی کہیں کہ اس کا کام جو ہے وہ صرف لوگوں کو انفارمیشن دینا ہے اور غیر جانب دارانا اور درست انفارمیشن دینا ہے. میڈیا اپنے مفادات کے تحت اور اپنے معاملات کے تحت جو ہے لوگوں تک اطلاعات پہنچاتا ہے, اور میڈیا کا اس شو میں بٹا ہوا ہے, کئی فرقوں میں بٹا ہوا ہے, اور اگر مسلمانوں کے بہتر فرقے ہیں تو میڈیا کو تو آپ نے صرف تین ہی بتایا ہے یار.
شکریہ. نیکسٹ کال لیتے جی. ہلو, السلام علیکم.
ہلو جی, السلام علیکم.
کون بات کر رہے ہیں سر؟
جی کامران بات کر رہا ہوں.
جی کامران صاحب.
اچھا میرا سوال یہ ہے کہ شیخ رشید کے بارے میں جو خبر نہیں ملی ہے, میرے کسی نے بتایا کہ ان کے شاید انڈے پڑے ہیں لندن میں, یہ مجھے کنفرم کرنا ہے, تو یہ صحیح خبر ہے یا کوئی افواہ اڑائی ہوئی ہے؟
بہت شکریہ جی. قاضی ہاشمی صاحب
پتا نہیں آپ کو تو انڈوں والی خبر دیکھیے آپ نے, میں نے ابھی دیکھی ہے جو ایک بہت خوبصورت لڑکی کے ساتھ کس کر رہے ہیں, ابھی دیکھی ہے میں نے.
نہیں مگر وہاں پر صبح کی یہ نیوز تھی, یہاں پر صبح کی یہ نیوز تھی کہ وہاں پر ان پہ انڈوں سے حملہ کیا گیا
ہے. یہاں پر بھی سوشل میڈیا میں چل رہی ہے, وہاں پر ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے بدتمیزی کی ہے یا غصے کا اظہار کیا ہے پاکستانی میڈیا میں, رپورٹ ملا ہے.
جی جی. ہلو السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. جی
جی سر.
جی خاور صاحب دیکھیں باجوا صاحب کی جو ایکسٹینشن ہوئی ہے حالات کو دیکھ کر, جیسے کیانی صاحب کی ہوئی تھی, تو بات یہ ہے کہ اس وقت کیانی صاحب کے لیے یہی ایک پروپوگنڈا کیا گیا تھا کہ ان کی قبر کہاں پہ ہوگی, جیسے آپ باجوا صاحب کے لیے وہ جو جیلو میں ہیں ان کے لیے جو پروپوگنڈے کا سپرے کر رہے ہیں. چلے یہ تو ہوگی جو مذہب پہ اٹیک ہو رہا ہے, تو مشرف صاحب کو بھی یہی کہا جاتا تھا, پھر انہوں نے مجبوراً کہا کہ میری آئی ڈی پہ سید لکھا ہوا ہے, ان کو بھی یہی کہتے تھے کہ ان کی قبر کہاں پہ ہوگی. دوسرا بات اب میں کرنا چاہتا ہوں, اعتزاز حسن صاحب نے جو کہا جج صاحب کے لیے کہ بھائی یہ جو فلم ہے جو چھوٹے چھوٹے پیسز میں تیار کی گئی ہے, اس کا سارا کچھ سامنے ہے کہ آ جائے گا بعد میں, اور یہ پروپوگنڈے والی جو مافیا ہے اگر ان کو کنٹرول کیا گیا پاکستان میں, وہ ایک میسج دینا چاہتے تھے انڈیا کے لیے کہ خلائی مخلوق ایک جو ہے نا یہ سلیکٹڈ جیلی, یہ صرف انڈیا کو بتانا چاہتے تھے, اور یہ سارا دفن ہو جائے گا. اور خاور صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ جو بچوں کا بھی ریپ ہوتا تھا بچیوں کا ہوتا تھا, یہ ویڈیو بنانے والے جو مافیا ہے کہ آنے والے ٹائم میں ان کے لیے کچھ سزائیں مقرر ہوں گی, اس پہ ذرا جواب.
بہت شکریہ جی سر.
کیا اس کے لیے کوئی پاکستان میں قانون سازی کی گئی ہے؟ بچوں کو زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں, اس کے لیے یہ مثبت خبر یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے جو تھوڑی بہت قانون سازی کی ہے اس میں یہ ایشو بھی شامل ہے. ہمارا خیال ہے کہ اس کو مزید مضبوط طریقے سے کیا جائے گا, اور یہ معاملہ پاکستان میں اب کسی حد تک ایک سال میں تو واقعات میں بہت کمی آئی ہے, اور اللہ کرے کہ یہ واقعات نہ صرف کم ہو بلکہ یہ پاکستان سے ختم ہونے چاہیے. جی
نیکسٹ کال ہے جی. ہلو السلام علیکم.
ہلو
جی کون بات کر رہے ہیں سر؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں سر؟
اقبال بات کر رہا ہوں.
جی اقبال صاحب.
میں ابھی مطلب ایک کالر نے کہا اور پھر ہاشمی صاحب نے اس کا جواب جو ہے ڈر کے مارے نہیں دیا, حالانکہ ماشاء اللہ یہ بہت ہی صحیح جواب, مطلب بڑی اسٹینڈ لیتے ہیں, بڑی مضبوطی سے جواب دیتے ہیں. دیکھیں شارٹ بات کر رہا ہوں کہ ایک کا تعلق, ایک کی ماں کا تعلق دوسرے کے باپ کا تعلق ایک ہی جگہ سے ہے. بات یہ ہے کہ اگر یہی صورتحال لوگوں کو پتا ہے, چاہے یہ صحیح ہو چاہے غلط ہو, لیکن اس میں کچھ نہ کچھ تو حقیقت ہوگی. کیا اس کی وجہ سے فوج کے اندر کچھ مطلب مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے؟ اب جیسے کہ وہ اس بھٹ صاحب کو ہٹایا گیا تھا جن کو نواز شریف صاحب لائے تھے, کیا ایسی صورتحال نہیں پیدا ہو سکتی؟
بہت شکریہ اقبال صاحب. جی جی صاحب.
یار ان کو صرف یہ بتائیں کہ یہ ایشو جو ہے اس کو جب بھی پاکستان میں فوج کے سربراہان یا تیسرے سربراہ ہیں یا چوتھے سربراہ ہیں ان کو ذرا اتنا بتا دیں کہ قائد اعظم نے جو پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ جو ہے ان کے بارے میں جو جن کا جو ذکر کر رہے ہیں ان کے بارے میں تو میرے پاس کوئی تصدیق نہیں ہے, لیکن جو قائد اعظم کے پہلے وزیر خارجہ تھے وہ تو اعلانیہ طور پہ اس فرقے سے تعلق رکھتے تھے. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے اس موضوع کو میں دوستوں سے گزارش کروں گا, کیونکہ یہ موجودہ حالات میں جبکہ پاکستان جو ہے دشمن میں گرا ہوا ہے تو اس بات کو موضوع بنانا جو ہے یہ دشمن کو تقویت دینے سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں ہے.
بہت صحیح کہا آپ نے, بہت صحیح کہا. اور جو پانی کے کیا حالات ہیں قاور نعیم ہاشمی صاحب, وہاں دریاؤں میں ذرا پانی کی ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے کہ ہم اس کو,
پاکستان کو ہر سال اطلاع دی جاتی ہے کہ جی ہم پانی چھوڑ رہے ہیں سیلاب کا پانی اور انتظامات کیے جاتے ہیں. اس دفعہ انہوں نے بغیر اطلاع کے جو ہے پانی چھوڑا ہے, اور یہ ہمارا جو ہے وہ پنجاب کے تو بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جو زیر آب آ چکے ہیں, کوڈا سے لے کے بہاول نگر تک کا ایریا جو ہے وہ زیر آب ہے, اور اکاڑا سے لے کر فیصل آباد جانے والے راستے اور دوسرے شہروں میں جانے والے راستے اور بے شمار دیہات جو ہیں ان کا رابطہ کٹ گیا ہے دوسرے شہروں کے ساتھ.
ہلو, السلام علیکم.
جی ایک منٹ ہولڈ کریں سر آپ.
ہلو,
ہزاروں گھر اور ہزاروں لوگ متاثر ہوئے ہیں. اور
ہلو
بہت سارے میرے بھیا آپ ذرا ایک منٹ ہولڈ کریں گے آپ,
اور اس کو
کیا
بھی جو ہے ہم یہ ایک طرح کی,
ہلو
یہ ہر سال ہوتا ہے پانی چھوڑتا ہے بھارت, لیکن چونکہ اطلاع نہیں دی گئی اس دفعہ میں اس لیے ہم اس کو بھی ایک بھارت کی طرف سے آپ ہی جارحیت تصور کر رہے ہیں.
جی نیکسٹ کالر. جی ہلو, السلام علیکم.
ہلو, السلام علیکم.
جی کون بات کر رہے ہیں سر؟
میں اظہر راجپوت بول رہا ہوں کینیڈا سے, ٹورنٹو سے. میں آپ کا جو ہے نا ریڈیو پروگرام تقریباً روز سنتا ہوں, کوئی مس نہیں کرتا.
بہت شکریہ سر.
بس مائی صاحب میرے سے صرف آپ سے یہ میں نے کہنا تھا کہ جب انڈیا کے حالات دیکھیں اور انڈیا کا میڈیا دیکھیں یا انڈین پروگرام یہاں میں سنتا ہوں, تو کبھی بھی کسی فوج کے سربراہ یا فوج کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا جاتا.
صحیح.
یہ جو ہمارے پاکستان کے جو لوگ ہیں یہ ایک میڈیا وار بننا اور آپ یاد ہوگا اندرا گاندھی نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کو ختم کرنا ہوگا تو جنگ اس کو ہتھیاروں سے نہیں ختم کر سکتے, ہم میڈیا سے ختم کریں گے.
صحیح.
تو مہربانی جی یہ لوگ آ کے بات کرتے ہیں کہ اس کا باپ کون تھا, اس کی ماں کون تھی, وہ ہمارے ملک کا سربراہ ہے, فوجی سربراہ ہے, اور یہ ہمارے سیاستدانوں نے ایک مذاق بنا رکھا ہے.
صحیح بات.
جب تک فوج ان کے ساتھ ہوتی ہے تو سب اچھا ہوتا ہے, جب ان کے اوپر ہاتھ پڑتا ہے, دم پہ ہاتھ پڑتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ ہم قادیانی ہیں تو یہ ہے اور وہ ہے, تو یہ غلط بات ہے. میری آپ سے صرف ایک التجا ہے بینگ اے پاکستانی کہ آپ اس طرح کے لوگوں کی کال مت لیا, اس وقت ہم وار کے اندر ہیں.
صحیح کہا.
ٹھیک ہے نا, اس سے ہمیں جو ہے ہماری فوج کو نقصان پہنچے گا.
بہت شکریہ آپ کا, بہت صحیح بات کی آپ نے, بڑی مہربانی راجپوت صاحب.
اگر راجپوت صاحب, ہم 100% اگر راجپوت صاحب کے ساتھ ہیں جو انہوں نے بات کی.
جی نیکسٹ کال. جی ہلو, السلام علیکم.
ہاشمی صاحب اور ماجد جمال, آپ دونوں کو, سارے بہنوں بھائیوں کو گرمیل سنگھ دیر کی طرف سے السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اچھا ہاشمی صاحب, میرا سوال یہ ہے, ابھی جو آئے ہیں تباہی مچی ہے پانی کی وجہ سے, تو ہمارے سر پر بھی یہ تلوار لٹکتی ہے. انہوں نے جو ستلج دریا کے اوپر بھاکڑا ڈیم بنا رکھا ہے, تو جب یہ دیکھتے ہیں कि उसमें इतना पानी भर गया, पहले तो वो उसको जो झील है गोविंद सागर उसको ये साफ नहीं करते तो फिर वो भर जाती है, फिर उसके फ्लड गेट खोल दिए जाते हैं। मेरा शहर लुधियाना बिल्कुल सतलुज दरिया के ऊपर बसा हुआ है, जो मैं कल बात की आधी बात की वहां पर तबाही मचाई गई है, वो सतलुज दरिया ने मचाई है, उन्होंने कुछ फ्लड गेट खोल दिए है, इससे हमारा पंजाब तबाही पर आ गया है तो तुम्हारा पंजाब भी तबाही पर। अब देखो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे, अब पाकिस्तान को क्यों पानी छोड़ा इन्होंने, आप अपने पास पानी रखते तो जब पानी की बात होती है हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों लोगों को मुल्क ये इंडिया वाले बेवकूफ बना रहे हैं, उधर पाकिस्तान में भी तबाही है, ये राजस्थान को पानी क्यों नहीं देते, हरियाणा को, उधर निकाल दें पानी, हम बर्बाद हो रहे हैं, हमारा जो खेतों में जो ये चावल बीजे हुए थे सब फसलें बर्बाद हो गई, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं इसके बारे में हाशमी साहब से कुछ पूछना चाहता हूँ।
बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। हाशमी साहब क्या कहेंगे आप?
देखिए जी, हम बात कर रहे थे कि ये दरिया सिंध और सतलुज का जो लाखों क्यूसिक पानी छोड़ता है, छोड़ा गया है पाकिस्तान को लोगों को बचाने के लिए, देहात को बचाने के लिए पाकिस्तान को फौज भी तलब करना पड़ी है, और उसने लद्दाख डैम जो है उसके भी 3 खोले हैं, और दरिया सिंध में घोटकी चश्मा के मुकाम पर भी सैलाब है, और कई सिंध में भी दर्जनों देहात आब है, तो ये सारी चीजें तो अपनी जगह है, लेकिन हमें अपना भी थोड़ा सा देखना चाहिए। लुधियाना की और मशरकी पंजाब की बात जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ एक इशू भी इस तरह बनता है कि वो चूंकि हिंदुस्तान के जेर इंतजाम इलाके हैं और हिंदुस्तान जो है वो सरदारों की दुश्मनी में ये सब कुछ करता है, और मशरकी पंजाब की हुकूमत को भी मेरे ख्याल में अपने कफज के लिए कुछ करना चाहिए, और ये हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी हिफाजत के लिए हर साल हम इतने नुकसान उठाते हैं, हम डैम नहीं बना सके, अगर हमने डैमों की तरफ तोज्जो दी होती तो भारत तक ये जो आबी जा रही है हर साल होती है सैलाब की सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा कर देते हैं, तो इससे हम बच सकते थे। तो मेरे ख्याल में ये सूरत हाल क्योंकि खत्म होने वाली नहीं है, उसका तरीका यही है कि हम अपने तहफ्फुज़ का इंतजाम करें
जी। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम
जी,
मैं ऑन द एयर हूं।
जी आप ऑन द एयर हैं सर।
हाशमी साहब, हमजा जरदारी अर्ज कर रहा हूं सर। पहले तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें जो ये सो काल जमहूरी और इस्लामी दफात उनको निकाल दें, डजंट मेक अ डिफरेंट कि कोई हिंदू है, क्रिश्चियन है, कादियानी है, शी है, सुन्नी है, सिंधी है, पंजाबी है, चाहे वो सदर बने, आर्मी चीफ बने, जो भी बने, वो खत्म करना चाहिए।
मखसूस सियासी जमात के लोग नजर आए हैं, ये एक मखसूस सियासी जमात के लोग नजर आए हैं जिन्होंने सोच समझ के आज ये हमला करने की कोशिश की है, और मैं आज के दिन जबकि पाकिस्तान, अगर ये वाकई पाकिस्तानी थे और पाकिस्तानियत इनके अंदर थी तो इन्होंने आज जो सवाल किए हैं, मुझे इनकी पाकिस्तानियत जो है बड़ी मशकूक नजर आई है।
सही जी 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 जी, सही कह रहे हैं आप एकदम।
हेलो जरदारी साहब बात कर रहे हैं।
जरदारी साहब
लाइन
नहीं, जरदारी साहब की लाइन कट गई है। मैं जरदारी साहब, आप दोबारा कॉल कर लें प्लीज। जरदारी साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि दोबारा कॉल कर लें आप, क्योंकि आपकी लाइन कट गई। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
कौन बात कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कौन बात कर रहे हैं?
नदीम बात कर रहा हूँ। हाशमी साहब अस्सलाम वालेकुम। हाशमी साहब, ऐसा है कि यहाँ कनाडा के अंदर ना बहुत तरह के लोग आए हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली, जाहिर सी बात है 30-40 साल से पार्टी है, उन्होंने कुछ ना कुछ तो करा है जो इनको भेजा है इधर उधर। असल में प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है, ये जो नवाज शरीफ एंड कंपनी जो है ना, ये लोग है ना जजों को और जनरलों को खरीदते रहे, तो इमरान खान ने जो ये फैसला करा है ना, अभी कोई नया जनरल आ जाता उसको ये माल लगवा के बीएमडब्ल्यू घर पहुंचाते थे जनरलों के, उसको भी माल दे सकते थे,
वो चेंज हो सकती थी सारी इनकी, ये जेलों से रहा हो सकते थे, उन्होंने मोर लगा दी है उसमें इमरान खान ने इन लोगों के ऊपर, और ये आर्मी ने भी मोर लगा दी है कि इनको नहीं छोड़ना। ये इमरान खान का फैसला नहीं है, ये सारे मिलके करते हैं, सारी आर्मी सब पता है क्या हो रहा है कश्मीर में इधर उधर अफगानिस्तान, ये लोग बच्चे इन लोगों को पता नहीं है सियासत क्या है, ये बलबन नवाज शरीफ को छोड़ दो, गर्दारी को छोड़ दो, सब कुछ 40 साल क्या करते रहे ये लोग, क्या ठीक कर लेते निजाम को, इन्होंने नहीं करना था, इनके बच्चे इनकी फैमिलियां बाहर है मजे ले रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं, अब्बा अंदर बहन अंदर सब अंदर, और वो आ भी नहीं रहे, उनको सिर्फ पैसे से प्यार है या लोगों को पैसा उन्होंने माल है, उन्होंने हमने तो नहीं आना भाई, जजों को खरीद रहे सोफिया के अंदर फलानी जगह उसकी वीडियो बना रहे हैं, ये जो खोसा साहब ने कहा था ना कि ये सिसिलियन माफिया है, ये ठीक कहा था उन्होंने इनके लिए,
बहुत शुक्रिया,
दो राय नहीं है,
बहुत शुक्रिया, सही कहा था, बहुत शुक्रिया
माजिद भाई, ये सही बातें ही आपको बता रहा हूँ मैं,
बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत
थैंक यू
जी 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 जी, जी, जी। नेक्स्ट कॉल जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम, जी सर,
सर मैंने सिर्फ फोन किया आज स्पेशल जरदारी साहब को 100 नंबर देने के लिए, वेरी गुड, आज उन्होंने पाकिस्तान के हक में बात की है, आई लव इट,
बहुत शुक्रिया सर,
मुझे बड़ा मजा आया कि उन्होंने ये जो लोग मनफी बातें कर रहे हैं रिलीजियस बेस के ऊपर और ये फिरकेबाजी के ऊपर, इनको थोड़ा सा समझना चाहिए कि अब वो वक्त नहीं है कि हम इस तरह की बातें करें, ये मीडिया, अगर मीडिया इंडिया कर रहा तो आपके ये जो सोशल मीडिया, इसके ऊपर भी आपको नहीं पता कि कितने नाम बदल के वो लगे हुए हैं, और यही उनकी ये उनकी कामयाबी है जो हम उनको दे रहे हैं, हम खुद अपने अपने मुंह से उनको कामयाबी दे रहे हैं,
एकदम सही कहा, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका जी, नेक्स्ट कॉल जी, नेक्स्ट कॉल जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम,
वालेकुम सलाम, माजिद भाई जमील बोल रहा हूँ,
जी जमील भाई,
ये जो लोग आर्मी के खिलाफ बातें कर रहे हैं इनको शर्म आनी चाहिए, और ये कहना कि भाई जनरल का मसला क्या है, आपने उससे कितना बदतर, तो आपके इस्लाम के मसला क्या है, क्या उससे नमाज पढ़वानी है या प्रोफेशनल काम करवाना है, जनरल जो है एक प्रोफेशनल, उसकी कोई ये गलती बता देंगे भाई इसकी ये गलती है, इसकी एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए थी, और बाकी जो अभी मेरे से पहले जिस साहब कॉल कर रहे थे कि जी वो नवाज शरीफ वाला उसको पैसे दे देते हैं, और उनको भी शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी के किसी अफसर को कोई खरीद सकता है,
कोई नहीं खरीद सकता सर, बहुत शुक्रिया,
ये मतलब ये समझ नहीं आ रही कि भाई पाकिस्तान किन हालात में है, और ये इन लोगों की पाकिस्तानियत और मुसलमानियत कैसी है कि भाई अपने ही वो तनकीद करना बड़ा आसान है,
सही कहा आपने,
तो अल्लाह करे कि इनको सबको हिदायत मिले,
बहुत शुक्रिया,
मुल्क किस नाजुक हालात में है उसको समझे,
बहुत शुक्रिया सर आपका, बड़ी मेहरबानी आपकी, नेक्स्ट कॉल जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम,
अस्सलाम वालेकुम
जी, वालेकुम सलाम
सर, बात यह है कि अभी ये बात हो रही है कि ये जो इस वक्त जो इत्तेहाद है फौज का और जो जमहूरी हुकूमत जो कि इस वक्त की है, जो भी हुकूमत है, कि जी इन्होंने तहिया कर लिया है कि ये लुटेरों को पकड़ के रहेंगे जो जिन्होंने लूटा है, तो ये जब लूटा जा रहा था तो ये कहाँ थी वो फौज, मैंने अपने जो है मैं आपको बताऊँ, मैं खुद इनका ये इसलिए डसा हुआ हूँ कि क्यानी साहब के भाई ने की जो DHA है, मैंने उसमें आज से 10 साल पहले तकरीबन $25,000 इन्वेस्ट किया और आज तक मुझे वो प्लॉट नहीं मिले, लेकिन कयानी साहब जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर मजे कर रहे हैं, तो इन लोगों को उस वक्त ही पता चलता था कि कौन टाके मार रहा है, और अब ये कैसे इनको जो है ये वही इन पे नाजिल हुई है कि जनाब ये डाके पड़ रहे थे, कहाँ सो रहे थे उस वक्त ये लोग,
बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया आपका जी, हेलो नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम,
हेलो,
हाँ जी हेलो,
अस्सलाम वालेकुम जी,
जी वालेकुम सलाम,
मेरा ये सवाल है कि ये देखें कि इस्लाम का पाकिस्तान में ही सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है, चलो अल्लाह ताला ये तो अच्छी बात है, लेकिन इस्लाम और हम लोगों ने पाकिस्तान को इतना कमजोर कर दिया है कि आज पाकिस्तान मुआशी हालात में इतना कमजोर हो गया, टैक्स देने को कोई तैयार नहीं है, वहां हमारी मुसलमानियत किधर जाती है, हम मुल्क के सके हैं, हम तो मुल्क के दुश्मन है, 0.5% लोग तो सिर्फ टैक्स देते हैं,
सही कहा,
तो यही मेरा कहना था।
बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट कॉल जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। सॉरी मेरी छोटी सी बात है, सिर्फ ज्यादा लंबी नहीं है। खबर खबर हाशमी साहब, अगर एक मुल्क में वजीर आजम भी जाए और जनरल भी जाए तो तोपों की सलामी अगर जनरल को मिले तो वजीर आजम को तोपों की सलामी ना मिले तो इसमें हेलो
जी खबर नहीं हाशमी साहब
जी जी अगर सुने जनरल को तोपों की सलामी की तोपों की सलामी मिले और वजीर आजम को ना मिले तो इसमें क्या कोई चक्कर तो है ना। थैंक यू।
मुझे आप लोगों पे हंसी तो नहीं आती मगर अफसोस ज़रूर होता है, अफसोस ज़रूर होता है आप लोगों की बातों से। हम ना बिखरे हुए लोग हैं अनफॉर्चुनेटली। जनाब कावदीम हाशमी साहब की लाइन डिसकनेक्ट हो गई है, मगर मैं आप लोगों को इतना कहूँगा कि हम बिखरे हुए लोग हैं। हम परसों भी मैंने आपको मिसाल दी थी, बड़ी घटिया सी मिसाल है मगर मैं मिसाल ज़रूर दूंगा, एक थप्पड़ एंड मुक्के की, कि थप्पड़ मारते हैं इतना हर्ट नहीं करता जितना आप उसको मिला के अगर मुक्का मारें ना तो जबड़ा तोड़ सकता है। मगर ये कि हम लोग आपस में कहाँ से आगे बढ़ेंगे, कहाँ से, वी आर नॉट नेशनलिस्ट, हम नेशनलिस्ट ही नहीं है, हम तो अपनी नेशन के लिए काम नहीं कर रहे। कोई भी आप देख, ये जो कॉल्स आती हैं मुझे अफसोस होता है ये सुन के कि आप लोग इतने बिखरे हुए लोग हो, इतने बिखरे हुए लोग हो, आप दीन से बिखरे हुए हो, आप नेशनैलिटी से बिखरे हुए हो, आप सियासी बिखरे हुए हो, हम तमाम चीज़ों में बिखरे हुए हैं। एक अल्लाह है, एक रसूल है और एक किताब है, मगर उसके बावजूद हमने इतने फिरके बना लिए हैं कि आपस में एक दूसरे को, हम मुसलमान लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम कभी भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें बर्दाश्त का मादा तो हम में है ही नहीं। हम फौरी तौर पर फतवा देते हैं जी ये काफिर है जी, ये हमको तो काफिर का मतलब ही नहीं पता, हमें पता ही नहीं कि काफिर कौन होता है। हम फौरी तौर पर हम फतवा देने के लिए तैयार होते हैं कि ये जो बात कर रहा है ये काफिर है सर, और फिर अपने ही अंदर, हमें किसी और की जरूरत नहीं है, हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे की दुश्मनी खुद ही है। हमें क्या जरूरत पड़ी कि कोई आके हम हमला करे, या हम तो आप देखें हमारी बातों से देख लें, मैं पिछले सिर्फ एक घंटे की बात करता हूँ, सिर्फ एक घंटा जो पिछला एक घंटा है हमारा, हमने जो एयर पर गुजारा है पूरी दुनिया सुन रही है हमें, उसमें ये तो नहीं है सिर्फ पाकिस्तानी या मुसलमान सुनते हैं, हमें हर किस्म का लोग सुनते हैं और सुनना चाहिए, आई वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। मगर आप लोग अपने आप में, अपने गिरबानों में झांक के देखिए कि आप किसी एक कलमा गो आदमी को काफिर कह दिया आपने, ये काफिर है जी, वो प्राइम मिनिस्टर ने कुछ किया उसको काफिर कह दिया जी, जनरल साहब ने कुछ किया उनको काफिर कह दिया जी, वो दूसरा, I am ashamed to be a Pakistani. Ashamed to be a Pakistani. अगर this is what the Pakistan stands for. हम तो आप इकट्ठे तो होके देखें, एक प्लेटफॉर्म पे तो आए आप, एक प्लेटफॉर्म पे आके देखें फिर देखिए कि कौन किसकी हिम्मत होती है कि आप अपने आप को मजबूत करना है तो हम आपस में तो इत्तेफाक करें, आपस में इत्तेफाक नहीं है हर बात पे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे जनरल हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मौलाना हो, हम हर एक का इख्तलाफ करना चाहते हैं। हमें बड़ा मजा आता है कि हम रेडियो पर आके किसी की बेइज्जती कर दें, बहुत, हम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं जी, देखा मैंने बराबर बैठे वाले या अपनी बेगम को या अपने बच्चों को या अपने दोस्तों को कह रहे होंगे देखो मैंने क्या बात की है, मैंने तबाह कर दिया इनको। मेरी जान, आपने तबाह किसी को नहीं किया है, आपने अपने आप को तबाह किया है, क्योंकि आप अपने मुल्क के मुतालिक ऐसी बात कर रहे हो, अपने फौज के मुतालिक ऐसी बात कर रहे हो। हम तो बाहर वालों की क्या जरूरत पड़ी है हमें कुछ मारने की, हम तो अब खुद ही काफी है अपने आप को मारने के लिए साहब, किसी की जरूरत नहीं है हमें कि कोई आके हमें जी तोपों से और हवाई जहाज़ों से मारे, क्यों अपने उसने गैस खर्च करना है, क्यों उसने पेट्रोल खर्च करना है, वो तो हम तो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। पाकिस्तानी बने, मुसलमान बने, और सबसे बड़ी बात इंसान बने। ये सारी चीजें रह जाएंगी आपकी, पहले अच्छे इंसान बने आप, रिगार्डलेस ऑफ कौन सा कलर, रेस एंड रिलीजन, क्योंकि पाकिस्तान में हर रिलीजन का आदमी बसता है, हर रिलीजन का आदमी बसता है।